मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों, नमस्कार। AFEIS के आज 10 दिसंबर 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं, और आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने एक नौजवान साथी कविता अग्रवाल का, जो चंदौसी उत्तर प्रदेश से हैं, जिन्होंने एकेडमी की 7 से 21 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं कल के ही विषय को, जो हम लोग ज्यादा लोकतंत्र के बारे में बात कर रहे थे और उसको लेकर के मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, उसी पर कुछ बात करना चाहूंगा। लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। न्यूज आपने सुनी होगी, न्यूज चैनल्स पर भी आप गए होंगे। कल हमारी कैबिनेट की मीटिंग थी, हमेशा हर बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग होती है, और मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं कि जिसे आप सरकार कहते हैं, अगर समूह के रूप में उसके स्वरूप को आप जानना चाहें तो इनफैक्ट कैबिनेट ही सरकार होती है और वही सारे महत्वपूर्ण निर्णय लेती है ज्यादातर। तो कल कैबिनेट की मीटिंग थी और उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनमें से दो निर्णयों की मैं आप सबसे चर्चा करना चाहूंगा। एक योजना शुरू की गई है और वह है पीएम यानी कि प्रधानमंत्री वाणी योजना। वाणी योजना, इसे थोड़ा सा समझ लीजिए कि यह है कि कभी कभी प्री एग्जामिनेशन में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, सिविल सर्विस में भी पूछे जाते हैं और स्टेट सिविल सर्विस में भी पूछे जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में यहां बात कर रहा हूं। वाणी की जो स्पेलिंग है वो वी से नहीं है, वी फॉर विक्ट्री नहीं है, ये डब्ल्यू से है, डब्ल्यू, डब्ल्यू ए एन आई, वाणी। पीएम तो है ये प्रधानमंत्री, तो चलिए प्रधानमंत्री का मत, अगर किसी योजना के सामने प्रधानमंत्री का नाम लगा हुआ है तो दो चीजें आपके दिमाग में बहुत क्लियर होनी चाहिए। पहला तो यह है कि केंद्र सरकार की योजना है, चीफ मिनिस्टर का नाम लगा है तो राज्य सरकार की योजना है जिस राज्य में ये लागू हो रही है, और दूसरा यह है कि पूरे देश में लागू होगी, क्योंकि केंद्र सरकार की योजना है तो केंद्र तो पूरे देश में लागू करेगी। तो पीएम यानी कि ये एक तरह से राष्ट्रीय योजना है, डब्ल्यू ए एन आई। ये डब्ल्यू ए एन आई क्या है? यह है बेसिकली, इसके आगे आप पब्लिक शब्द एक लगा दीजिए, डब्ल्यू से शुरू हुआ है वाईफाई, वाईफाई के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, वाईफाई। ए स्टैंड फॉर एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, ठीक है, वाईफाई तक पहुंच। फिर है एन, एन किसके लिए है? नेटवर्क, ठीक है। और फिर है आई, वह इंटरफेस, इसका मतलब हो गया पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, जिसे कहा गया है पीएम वाणी स्कीम। अब आप देखिए कि एक मजेदार बात यह है कि वाणी का अर्थ भी होता है आवाज, मैं जो बोल रहा हूं तो मेरी वाणी आप तक पहुंच रही है ना। अब जो वाईफाई है उसके जरिए आप क्या करेंगे? आपका मोबाइल जब वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है तो आपके पास आवाज आने लगती है, आपके पास चित्र आने लगते हैं, लिखे हुए दृश्य आने लगते हैं, सब होने लगता है ना, यानी कि आपके स्मार्टफोन को वाणी मिल जाती है। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकेंगे कि इस योजना का संबंध दरअसल किससे है। बेसिकली एक प्रकार से डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में उठाया गया एक क्रांतिकारी कदम है, और इसका जो सबसे फायदा मिलना है वो मिलना है हमारे रूरल इंडिया को, क्योंकि देखिए इसके जो घटक दिए गए हैं, इसके तीन घटक हैं। पहला, इसके तहत पब्लिक डेटा ऑफिस खोला जाएगा, सिंपल सी बात है, पब्लिक डेटा ऑफिस मतलब एक ऐसा दफ्तर होगा, दफ्तर का मतलब समझिए कि मतलब ऑफिस टाइप का होगा, कुछ भी हो सकता है, वो चाय की दुकान हो सकती है, परचून की दुकान हो सकती है, छोटे छोटा सा स्थान होगा, और वहां जब आप जाएंगे तो आपको एक्सेस हो जाएगा, आपको वाईफाई सेवा वहां मिल जाएगी। अब ये जो खोलेगा कोई भी व्यक्ति होगा, बकायदे उसका रख रखाव करेगा, उसको उसका संचालन भी करेगा, और वो ग्राहकों तक ब्रांड में जो आपके कह लीजिए कि ब्रॉडबैंड सेवाएं हैं वो पहुंचा देगा। ये है पी, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा गया है PDO। इसका जो दूसरा घटक है वह है पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स। एग्रीगेटर्स का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सूत्रधार, जैसे नाटकों में देखा होगा ना कि एक व्यक्ति आता है और कहानी को जोड़ता रहता है, नेपथ्य से बोलता रहता है, तो उसको कहते हैं सूत्रधार, सूत्र को धारण करने वाला, यानी कि जो अलग अलग धागे हैं उनको धारण करके वो जोड़ता है। तो बस आप यही समझ लीजिए कि जो एग्रीगेटर है वो इसी तरह का काम करेगा। वो बेसिकली जैसे मंजूरी दिलाना है, लेखा जोखा रखना है, इस तरीके का काम वो करेगा। और इसके बाद जो तीसरा घटक है वो है ऐप प्रदाता, ऐप बनाने वाला। जिस क्षेत्र में जिस तरह के ऐप की जरूरत होगी वो उस तरह का ऐप तैयार कर देगा। और इस तरीके से पूरे के पूरे देश तक आप कह लीजिए कि ये जो डिजिटल सेवा है, जो ब्रॉडबैंड सेवा है, ये हमारी पहुंच जाएगी। तो नहीं लग रहा है आपको कि ये डिजिटल क्रांति है? एक बहुत बड़ी क्रांति होगी। और बताया गया है कि इसके तहत लगभग लगभग 1 करोड़ सेंटर खोले जाएंगे। और सरकार ने इसकी जो प्रक्रिया है उसको भी काफी सरल कर दिया है। तो सामान्य तौर पर बस इतनी ही जानकारी आपके लिए पर्याप्त होगी। और भारत सरकार डिजिटल क्रांति के लिए क्या कर रही है उसके तहत अब ये अपडेट हो गया है, ध्यान रखिएगा। कैबिनेट ने जो दूसरी मंजूरी दी है वो है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3 है उसके तहत ये योजना स्वीकृत की गई है। ये बहुत ही टेम्परेरी है, आप कह लीजिए कि मतलब अभी 2-1 साल तक ये योजना चलेगी। इसमें कहा यह गया है कि अभी आपको मालूम है कि कोरोना की वजह से कैसे रोजगार का संकट पैदा हो गया था, तो थोड़ी सी बस डेट को ध्यान में रख लीजिए, मंथ को ध्यान में रख लीजिए, वो मैं आपके नॉलेज में ला रहा हूँ कि इस बार 1 अक्टूबर से, 1 अक्टूबर से और 30 जून तक, अगले साल के 30 जून तक ऐसे लोगों की जिनकी सैलरी 15,000 से कम है, ठीक है, उन कर्मचारियों का जो पीएफ होगा, प्रोविडेंट फंड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भविष्य निधि। तो देखिए जब भविष्य निधि होता है उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं कहीं नौकरी कर रहा हूं और मुझे 15,000 रुपये सैलरी मिल रही है, तो मेरी सैलरी 15,000 रुपये है, तो इस 15,000 रुपये का एक फिक्स परसेंटेज, जनरली ये 12% के आसपास होता है, मैं अपनी सैलरी का 12% उस फंड में डाल दूंगा। और याद रखिए ये फंड मेरा ही पैसा है। और ठीक इतना ही पैसा 12% जिनके यहां मैं नौकरी कर रहा हूं वो अपनी तरफ से डालेंगे, यानी कि मेरी जो सैलरी है उसका 24% एक फंड में जमा होता चला जाएगा। और ये पैसा मेरा ही है, जब मैं यहां से नौकरी छोड़ूंगा या जब रिटायर हो जाऊंगा तो वो पैसा फिर मुझे वापस मिल जाएगा। तो यहां देखिए कि जो 50% है वो जो काम कर रहा है वो डालता है, और 50% जिनके यहाँ काम किया जा रहा है वो डालते हैं। सरकार ने कुल मिलाकर के ये फैसला किया है कि अब ये दोनों का धन सरकार अपनी तरफ से देगी, बस सिंपल सी बात है। तो इसको नाम दिया उन्होंने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, बस इतना ही आप अपने दिमाग में रखिए। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूँ, दैनिक भास्कर का ये आर्टिकल है, विराग गुप्ता जी का, खासकर जो हमारा किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेकर के आर्टिकल इन्होंने लिखा है। और इसमें इन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं और कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए हैं, सरकार के लिए भी पॉइंट्स दिए हैं और किसानों के लिए भी पॉइंट्स दिए हैं। मैं चाहूंगा कि आप इसे ध्यान से पढ़ें और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य आपको लगते हैं आप उन तथ्यों को नोट कर लें। और ये तथ्य ऐसे हैं जो मतलब किसान आंदोलन और अभी जो कृषि से संबंधित 3 कानून बने हैं उनसे जुड़े हुए तो हैं ही, साथ ही हमारे कृषि परिदृश्य को भी दिखाते हैं। आपको ध्यान होगा कि 2-3-4 दिन पहले मैंने दैनिक भास्कर का आपको एक एडिटोरियल कमेंट भी प्रोवाइड किया था जिसमें बहुत अच्छे कुछ डेटा दिए हुए थे, और उस समय मैंने कहा था कि इसमें से भी आप कुछ पॉइंट्स नोट कर लें। ऐसा करने से होता क्या है कि जो आपका उत्तर होगा वो बहुत ही कंप्लीट बनता है, बहुत वजनदार बनता है और एग्जामिनर को प्रभावित करने वाला हो जाता है। और यही तैयारी करने का मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है, तो आप लोग ऐसा करेंगे। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। कल हम लोग ज्यादा लोकतंत्र के बारे में बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि इसके बीच में एक शब्द और लगाया जाना चाहिए, ही, ज्यादा ही लोकतंत्र। क्योंकि इंग्लिश में जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था अमिताभ कांत जी ने, जो हमारे नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, वह टू मच ऑफ ए डेमोक्रेसी, टू मच, यहां टू TOO, कुछ ज्यादा ही लोकतंत्र है। इस मायने में यार कुछ जरूरत से ज्यादा ही हो रहा है अब ये लोकतंत्र के मामले में। चूंकि अमिताभ कांत जी ने कहा था वो एक सरकारी अधिकारी हैं, तो फिर सरकार में कि हमारे जो रविशंकर प्रसाद जी हैं मंत्री हैं, उन्होंने फिर इसको थोड़े से संभालने की कोशिश की और उसमें उन्होंने ये कहा कि हमें अपने लोकतंत्र पर गर्व है। लेकिन फिर भी इस पर लोगों ने बात करनी शुरू कर दी है, एक दो आर्टिकल्स इस तरह के आज लिखे गए हैं अखबारों में, मैं आप सबको प्रोवाइड भी कर रहा हूँ। और मैंने आप सबसे कहा था कि ये बहुत अच्छा अवसर है कि आप सब इसके बारे में सोचें, या यूं कह लीजिए कि इसका शव परीक्षण चीरफाड़ करें कि क्या सच में हमारे यहाँ ज्यादा ही लोकतंत्र है, या कि कम लोकतंत्र है, या कि आदर्श लोकतंत्र है। इसके बारे में मैंने आप सबसे कुछ पॉइंट्स निकालने के लिए कहा था, मुझे नहीं मालूम कि आपने क्या किया है। लेकिन मित्रों, मैं एक बात तो आप सबसे कहना चाहूँगा, हो सकता है कि मेरी ये बात आप सबको थोड़ी सी कड़वी लगे, कठोर लगे, लेकिन अगर आप सच में सिविल सर्वेंट बनना ही चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग को एक्टिवेट तो करना पड़ेगा। एक्टिवेट करने का मतलब है कि आप अपने दिमाग को इस तरीके का बनाइए कि वो अपनी तरफ से सोच सके, अपनी तरफ से आंसर लिख सके। अगर आप ये मानकर चल रहे हैं कि आप किताबें रट लेंगे और सिविल सर्वेंट बन जाएंगे, आप नोट्स रट करके बन जाएंगे जो आपने बनाए हुए हैं, नॉट एट ऑल, दैट इज नॉट पॉसिबल। और अगर आप इस भ्रम में हैं कि ठीक है यार वहां हम जाएंगे पे एग्जामिनेशन हॉल में वहां लिख लेंगे, तो भी आप भ्रम में हैं। आपको अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेंड करना होगा कि उसे सोचने की आदत पड़ सके। मैंने कल कुछ आपको बिंदु दिए थे, मैं आज फिर से आपको कुछ बिंदु दे रहा हूं। जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, बेसिकली वो लोकतंत्र क्या है, अगर आपसे यह प्रश्न सिविल सर्विस में पूछा जाता है तो मान करके चलिए कि वो ये जानना चाहता है कि सही मायने में आप लोकतंत्र को समझते हैं या नहीं समझते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोकतंत्र के लिए जो परिभाषा दी गई है बस आपने वही रट लिया और वही आपके लिए लोकतंत्र है। यहां मैं स्पेशली अपने ऑनलाइन क्लासेस के जो पेड स्टूडेंट हैं उनको याद दिलाना चाहूंगा फ्रेंड्स, कि अगर आपने पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर सुने होंगे तो आपको याद होगा कि मैंने डेमोक्रेसी को कितने एंगल से समझाने की कोशिश की है, और अलग अलग देशों में किस किस तरह की डेमोक्रेसी है। मैं यहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब वहां डेमोक्रेसी ही है। पाकिस्तान में तो डेमोक्रेसी है, लेकिन वो किस तरह की डेमोक्रेसी है, इस तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। तो जब आप इस तरीके से लोकतंत्र को समझ लेते हैं कि यह कोई एक पॉलिटिकल सिस्टम ही नहीं है, और अगर एक पॉलिटिकल सिस्टम है तो यह पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके का है, तब फिर आपका दिमाग आपको प्रोवाइड करता है पॉइंट्स कि नहीं आप इसको इस तरीके से देखें, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर इसको परख करके देखें। हम जो भी डिसीजन लेते हैं उस डिसीजन में जो पार्टिसिपेटरी सिस्टम कितना है, यानी कि जनता किस रूप में भाग ले सकती है, आप इस रूप में इसको सोच करके देखें। हमारी जो डेमोक्रेसी है ग्रास रूट लेवल पर कितना पहुंची है, हम इस रूप में देखें। हमने इस डेमोक्रेसी को स्वीकार किया है कुछ उद्देश्यों के साथ, क्या हमारे वो उद्देश्य पूरे हो पा रहे हैं, इस तरीके से भी आप देखें। आपके पास लगातार ये डेटा आता रहता है कि हमारा जो देश है उसके 1% या 2% लोगों के पास कुल संपदा का 60% है। तो ये समानता असमानता के आप इस अंतर को देख सकते हैं। तो क्या ये डेमोक्रेसी है, क्या ये टू मच डेमोक्रेसी है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कैसे हो रही है, उसमें लेटेस्ट आप घटनाओं को लेकर के आ सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप डेमोक्रेसी के चरित्र को समझ लेते हैं तो अपने आप आपके दिमाग में बिंदु उभरने लगते हैं और तब आप आंसर लिख पाते हैं। फ्रेंड्स, आप सबको ऐसा करना ही चाहिए और करना ही होगा, देर सवेर आपको इस स्थिति में पहुंचना ही होगा। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स के क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, विजय शेरावत जयपुर से, आदर्श सरोज नवी मुंबई से, गजेंद्र बिश्नोई बीकानेर राजस्थान से, और अजय धाकर ग्वालियर मध्य प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।